Banyam Sankhya Pandra, 250 ka 3 guna.
2026 May, Trump America K 250 Warsho ka Utsav Mananing Waliyan. Is prakar year 250 Warsho K Uskram K Sath, Mail ka Tanta, Hejo 437 Iso Purvse, Rafia K Youth, or Panium K Youth K Beach K Ithahas May, Antiochus Magnus Tuk Pahuchtahe. 250 Warsho K Unth May, Antiochus Magnus, 207 Iso Purv May of Vustat Hodahe. Rafia K Dus Wurs Pashat, or Panium Se Sat Wurs Purv. 250 Warsho K Ye Saksha, Mortipu, Rome ki 250 worse ki ovidi ke seth be male kadahe. Kunki verse 64 may, Nero ne isayam ka udpirdin arum kia, or 257 worse bad, 313 mimilan ke adad ace per. Constantine mahan ne isai therm ko vaith to di, or udpirdin samapt hilgea. Donald Trump America ko firse mahan banane ke apne prayaso ke liye jane jate hain. Ye unke anuyayon ka label, MAGA. Bhavishyavani mein Trump ka pratirupan Mahan Constantine or Mahan Antiochus dwara kiya gaya hai. Aur nissandeh Daniel adhyay 11 ke pratham kuch padon mein wo Cyrus Mahan, Xerxes Mahan aur tatpashchat Alexander Mahan hai. Isa purv 450 mein Cyrus, Darius aur Artaxerxes ke farman se lekar Paniyam ke itihas tak 250 varsh hote hain. तो 56 वर्षों का अंत राफिया और पनियम के मध्यवर्ती बिंदु पर पड़ता है और 2026 भी वैसा ही है. 2026 ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का मध्य है. नीरो के तो 56 वर्षों को उत्पीड़न का परिणाम एक ऐसे फरमान में होता है जो मसीही उत्पीड़न का अंत कर देता है. साइरस, नीरो और ट्रंप द्वारा निरूपित तो 56 वर्षों की तीन रेखाओं में नीरो की रेखा मध्य रेखा है.
कुरुश ने प्रथम आज्ञा दी और अर्तक्षत्र ने तृतीय आज्ञा दी. कुरुश प्रथम स्वर्गदूत है और अर्तक्षत्र तृतीय है. मेरा अभिप्राय है कि मैं कुरुश को उन तीनों आज्ञाओं के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त करूं जो मिलकर 184 सिक्सल पूर्व को चिन्हित करती है.
कुरुश 650 ईसा पूर्व में 250 वर्ष की एक काल रेखा आरंभ करता है जो पनियम के इतिहास में समाप्त होती है. ये वही इतिहास है जो एंटियोकस महान का है, और एंटियोकस महान डोनाल्ड ट्रंप है. पनियम रविवार के कानून से पूर्व का पद है. कुरुश उस 250 वर्ष की कालरेखा का आरंभ चिन्हित करता है जो पृथ्वी से निकलने वाले पशु के गणतंत्रवाद के सींग का प्रतिनिधित्व करती है, और कुरुश 2300 वर्षीय कालरेखा का भी आरंभ चिन्हित करता है जो पृथ्वी से निकलने वाले पशु के प्रोटेस्टेंटवाद के सींग का प्रतिनिधित्व करती है.
नीरो ऐसी ऐतिहासिक रेखा का आरंभ करता है जो उत्पीड़न से समझौते तक का प्रतिनिधित्व करती है. कुरुश और संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत जो ऐसी रेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका समापन किसी भविष्य सूचक कालावधि के मध्य बिंदु पर होता है. नीरो की रेखा का समापन समझौते के क्रमिक कालखंड के एक चित्रण के साथ होता है जिसकी शुरुआत 313 में मिलान के अध्यादेश से होती है, फिर 320 के प्रथम रविवार कानून से, और उसके पश्चात 323 में रोम का पूर्व और पश्चिम में विभाजन होता है. इन तीनों तिथियों पर कॉन्स्टेंटाइन परिलक्षित होता है. नीरो की रेखा में 313 से 323 तक का अंतराल 17 वर्ष है. कुरुश की रेखा में 117 ईसा पूर्व के राफिया के युद्ध से 200 ईसा पूर्व के पैनियम के युद्ध तक भी 17 वर्ष का ही अंतराल है.
दानियल के 11वें अध्याय में अर्तक्षस्त्र का आदेश तीसरा है. ये तीसरा आदेश तीसरे स्वर्गदूत और रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है. ईसा पूर्व 2750 से 250 वर्ष और 2703 से ढेर वर्ष दोनों ही उस इतिहास के मध्य में समाप्त होते हैं जो पद 16 में उल्लिखित रविवार के कानून से ठीक पूर्व घटित होता है. अध्याय 11 ऐसे पद प्रस्तुत करता है जो अंततः पद 10 में 1919-88 के इतिहास का, पद 11 में 2014 में आरंभ हुए यूक्रेनी युद्ध के इतिहास का, और फिर पद 13 में 2024 में ट्रंप के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए लौटने का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तत्पश्चात पद 14 2025 को निर्दिष्ट करता है जहां महिमामय देश से प्रथम पोप बाय दर्शन की स्थापना करता है.
दानियल 1140 की पूर्ति सन 1989 में हुई जब जॉन पॉल द्वितीय और रोनाल्ड रीगन के बीच हुए
एक गुप्त गठबंधन के द्वारा सोवियत संघ को गिरा दिया गया। सन 1989 में अंत के समय का वो गुप्त गठबंधन 1989 में आरंभ हुए भविष्यवाणी काल के अंत में होने वाले एक खुले गठबंधन का पूर्व रूप था। वही खुला गठबंधन उस दर्शन की स्थापना करता है।
2026 भविष्यवाणी संबंधी 250 वर्षों के इतिहास का अंत है, वो काल जो 1776 से 1798 में अंत के समय तक के 22 वर्षों से आरंभ हुआ था। उस प्रारंभिक इतिहास के 22 वर्ष 9/11 से 2023 तक के 22 वर्षीय इतिहास में परिलक्षित होते हैं। 1798 में उन 22 वर्षों के अंत पर दानियल की पुस्तक पर लगी मुहर हटाई गई और 9/11 से आरंभ होकर 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हुए 22 वर्षों के अंत पर यहूदा के गोत्र का सिंह ने यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की मुहरें खोलना आरंभ किया। 1799 पसात में 22 वर्षों के अंत में जिसकी मुहर खोली गई थी, वो संदेश 1831 में लोक समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये 111 में किंग जेम्स बाइबल के प्रकाशित होने के 220 वर्ष बाद था। 1799 से 1831 तक परमेश्वर का भविष्यवाणी वचन क्रमशः उद्घाटित होता गया। 1831 तक वो सार्वजनिक क्षेत्र में था और तब स्त्री बपरोशों को उस संदेश के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता था जिसकी मुहर 1799 में खुल चुकी थी। फिर 1840 में, जैसा कि सिस्टर वाइट उसे एक और उल्लेखनीय घटना कहती है, वो तब घटित हुई जब इस्लाम के विषय में की गई एक भविष्यवाणी की पूर्ति हुई। 22 वर्षों की अवधि के समापन 1798 से लेकर 220 वर्षों की अवधि के समापन 1231 तक एक संदेश की मुहर के खुलने की अवधि का निरूपण किया गया है। इस चित्रण में एक ऐसा मार्गचिह्न सम्मिलित है जहां उक्त संदेश औपचारिकीकृत किया जाता है। इसके पश्चात एक मार्गचिह्न आता है जो एक भविष्यवाणी की पहचान कराता है, जिसकी तत्पश्चात पुनर्गणना की गई और जो आगे चलकर पूरित होने पर ऐसा मार्गचिह्न स्थापित करती है जो परमेश्वर की शक्ति के अद्भुत प्रकटीकरण के आरंभ की पहचान कराता है। 1989 के आंदोलन के अंत में 22 वर्षों का कालखंड 9/11 से 2023 तक विस्तृत था जब पुनः एक भविष्यवाणी की मुहर खोली गई। वो भविष्यवाणी अनिवार्यतः ज्ञान वृद्धि का एक काल आरंभ करेगी, ऐसा ज्ञान जो परखेगा और पृथक करेगा, क्योंकि बहुत से खारा जाते हैं परंतु थोड़े चुने जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब उस संदेश को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। ये संदेश भविष्यवाणीगत पुनर्गणना से निकले संदेश के गुणधर्म धारण करेगा और उसमें पुनः एक भविष्यवाणी निहित होगी। जब वो सार्वजनिक भविष्यवाणी पूर्ण होगी, तब वो संदेश 1840 और पिंतेकुस्त के इतिहास द्वारा निरूपित रीति से सामर्थित किया जाएगा। 1985 में सोवियत संघ के पतन के साथ दानियल 11 सप्लीमेंट किया गया और 1996 में दानियल 11 का संदेश सार्वजनिक श्रोत में प्रस्तुत किया गया। 1776 के 220 वर्ष बाद है, जिसने न केवल उन 22 वर्षों का आरंभ किया जो 1798 में समाप्त हुए, परंतु उन 250 वर्षों का भी आरंभ किया जो 2026 में समाप्त होते हैं। गणतांत्रिक सिंह 2282 के राजनीतिक मध्यावधि चुनावों पर उपन्यास अपने मति बिंदु पर पहुंचता है और प्रोटेस्टे सिंह 37 टेक्स टेरो जो उस 30 वर्षीय अवधि का समापन है जिसका आरंभ 1996 में संदेश को औपचारिक रूप दिए जाने से हुआ का जो 1989 में अंत के समय पर अमृत किया गया था। यीशु सदैव आरंभ के द्वारा अंत को दर्शाते हैं, इसलिए 2026 चक्रे वो वर्ष है जब मध्यरात्रिनीय आह्वान के संशोधित संदेश का औपचारिककरण होना है। 1989 में अमहरित किए गए संदेश के 1976 में औपचारिक रूप दिए जाने के 30 वर्ष पश्चात। 1776 में आरंभ होने वाली 250 वर्षीय रेखा आपको 2026 तक ले जाती है, जो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की मध्यावधि है।
ठीक उससे पहले जब गधा मुक्त किया जाएगा और इस्लाम 911 की भांति पुनः संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रहार करेगा और उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस का युद्ध आरंभ होगा।
नीरो की 385 वर्षीय रेखा ऐतिहासिक और भविष्य सूचक रूप से तीन रेखाओं की मध्य रेखा है। यह नीरो की रेखा की पहचान दूसरे स्वर्गदूत के रूप में करती है, जो तीसरे परीक्षण से पूर्व आने वाला दूसरा परीक्षण है। वही दूसरा परीक्षण पशु की प्रतिमा का परीक्षण है, जो कलीसिया और राज्य के संयोग की क्रमिक स्थापना का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका प्रतिरूप 303 ईस्वी के मिलान के फरमान में मिलता है। उसी से 321 ईस्वी में प्रथम रविवार का कानून प्रवर्तित हुआ और फिर 337 ईस्वी के इतिहास द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उस राष्ट्रीय विनाश तक स्थिति पहुंची, जो रविवार के कानून के बाद सदैव आती है।
सन 353 में मिलान का फरमान संयुक्त राज्य अमेरिका में कलीसिया और राज्य के संबंध की स्थापना के उस प्रारंभ को चिह्नित करता है, जो क्रमशः पद 16 के रविवार के कानून तक ले जाता है। वो कार्य नोयल को पैट्रियट एक्ट के साथ आरंभ हुआ, परंतु मोहरबंदी के समय के अंत के फ्रैक्टल में पैट्रियट एक्ट और मिलान का फरमान दोनों ऐसे कृत्य का प्रतिरूप है जो समझौते की एक प्रगतिशील अवधि का आरंभ करता है, जो शीघ्र आगामी रविवार के कानून तक ले जाता है। ये भविष्यसूच कृत्यों की एक श्रृंखला में प्रथम है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से कलीसिया और राज्य को एक साथ लाती है और अंततः रविवार के कानून तक ले जाती है। 73 ईस्वी का मिलान का आज्ञापत्र अपने ऐतिहासिक अभिलेख में इन्हीं तत्वों को समाहित करता है, क्योंकि वो कोई एकल आज्ञापत्र नहीं था, वो रोम के पूर्वी भाग के शासक लिसिनियस के पत्रों की एक श्रृंखला था। उस समय रोम का पूर्वी भाग अब भी प्रबल रूप से बहुदेववादी था, जबकि कॉन्स्टेंटाइन अपने पश्चिमी राज्य को ईसाई धर्म के लिए खोल रहा था। समझौता स्वयं फरवरी 73 ईस्वी में एक शिखर भेंट के दौरान संपन्न हुआ, जिसमें लिसिनियस ने अपने गठबंधन को पुष्ट करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन की सौतेली बहन से विवाह भी किया। साम्राज्य के पूर्वी भाग में प्रख्यापित लिसिनियस के इन पत्रों ने ईसाइयों तथा अन्य सभी के लिए उपासना की स्वतंत्रता को विधिवत प्रवर्तित किया तथा जब्त की गई ईसाई संपत्ति के प्रत्यर्पण का भी आदेश दिया। मिलान के फरमान ने उत्पीड़न के 205 वर्षों का अंत किया और वो ऐसे कालखंड का द्योतक है जिसमें उस फरमान द्वारा निरूपित सभी स्वतंत्रताएं जैसे जैसे विश्व ट्रंप के साथ शीघ्र आने वाले रविवार के विधान की ओर अग्रसर होता है क्रमशः मसीहियों से छीन ली जानी है।
यदि पाठक उस निकट आगामी संघर्ष में प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों को समझना चाहता है तो उसे केवल उन उपायों के अभिलेख का अनुसरण करना है जिन्हें रोम ने बीते युगों में उसी उद्देश्य के लिए अपनाया था। यदि वो जानना चाहता है कि पोप मतावलंबी और प्रोटेस्टेंट एक होकर उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जो उनके सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं, तो वो उस आत्मा को देखे जो रोम ने सप्त और उसके समर्थकों के प्रति प्रकट की थी।
धर्मनिरपेक्ष सत्ता द्वारा समर्थित शाही फरमान, सामान्य परिषदें और कलीसियाई नियमाविधान वे सीढ़ियां थीं जिनके द्वारा उस मूर्ति पूजक उत्सव ने मसीही जगत में अपना आदरणीय स्थान प्राप्त किया। रविवार पालन को बाध्यकारी बनाने का प्रथम सार्वजनिक उपाय कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रख्यापित कानून था। ईस्वी सन 322 इस अध्यादेश ने नगरवासियों को सूर्य के वंदनीय दिवस पर विश्राम करने के लिए बाध्य किया, परंतु ग्रामीणों को अपने कृषि कार्य जारी रखने की अनुमति दी। यद्यपि वस्तुतः ये एक मूर्ति पूजक विधान था, तथापि सम्राट ने मसीही धर्म को नाम मात्र स्वीकार करने के पश्चात इसे लागू किया। महान संघर्ष 532-507।
संख्या 320, जो 350 का दशमांश है, विद्रोह और विभाजन का प्रतिनिधित्व करती है। येजकेल अध्याय 8 में सूर्य के आगे नतमस्तक होने वाले लाओदिकियाई एडवेंटिज्म के 320 नेता अगले ही अध्याय में मुहरबंद किए गए लोगों से अलग कर दिए जाते हैं और बहन व्हाइट येजकेल अध्याय 9 की मुहरबंदी को प्रकाशित वाक्य के 144 शास्त्र की मुहरबंदी के रूप में स्पष्टतः पहचानती है। वे 350 पुरुष तो केवल उन 350 प्रतिष्ठित पुरुषों का दशमांश हैं जो कोरह, दातान और अबीराम के विद्रोह में सम्मिलित हुए थे बहन व्हाइट को 1888 की जनरल कॉन्फ्रेंस की बैठक से जाने से मना किया गया क्योंकि गब्रियल ने उनसे कहा था कि उन्हें ठहर कर मिनियापोलिस के विद्रोह को लिपिबद्ध करना चाहिए क्योंकि वो कोरह के विद्रोह की पुनरावृत्ति था। 350 विद्रोह और पृथक्करण का एक प्रतीक है। मत्ती 350 में तीन दृष्टांत हैं जो दुष्टों और बुद्धिमानों के पृथक्करण के विषय में शिक्षा देते हैं। गणतांत्रिक और प्रोटेस्टेंट सिंह दोनों चार पीढ़ियों के रूप में निरूपित एक परकाल के अधीन है और वाचा की प्रजा तथा वो राष्ट्र जिसमें वाचा की प्रजा स्थापित है दोनों का न्याय उसी कालावधि में किया जाता है। पृथ्वी से निकलने वाले पशु के 250 वर्षों में जो बाइबल की भविष्यद्वाणी का छठा राज्य है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, नीरो की रेखा एक फरमान की पहचान करती है जिसका प्रतिरूप मिलान का फरमान है जो कानूनी संघर्ष की क्रमिक तीव्रता की शुरुआत को चिह्नित करता है और जो सन 103 वर्ष में रविवार के कानून के फरमान पर आकर समाप्त होती है। इसी से एक ऐसा काल आरंभ होता है जो 330 में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समस्त संसार दो वर्गों में विभाजित हो गया है जिन्हें पूर्व और पश्चिम के रूप में निरूपित किया गया है। इस 330 से 330 तक का वो 9 वर्षीय काल मंडपों के पर्व के 7 दिनों का भी है। ये 330 के रविवार के कानून से आरंभ होता है और 330 में जब मीकाएल उठ खड़ा होता है और अनुग्रह काल बंद हो जाता है तब समाप्त होता है। मिलेराइटो की इस आधारभूत समझ का कि दर्शन की स्थापना रोम ही करता है अस्वीकार करना उस आधारभूत परीक्षा में असफल होना है जो 31 दिसंबर 2023 को आई और 8 मई 2025 को तब समाप्त हुई जब महिमामय देश से पहला पोप चुना गया। वो आधारभूत सत्य जिसने विलियम मिलर को ये पहचानने में समर्थ किया कि रोम ही वो प्रतीक है जो दर्शन की स्थापना करता है वही सत्य है जिसे अस्वीकार करने पर प्रबल भ्रम आता है। उस प्रथम परीक्षा में असफल होना थिस्सलुनीकियों का प्रबल भ्रम ले आता है और ये सिद्ध करता है कि जो मूर्ख है जो समझते नहीं वे सत्य से प्रेम नहीं रखते। बाह्य दर्शन की स्थापना करने वाले प्रतीक का अस्वीकार करना उसी आधारभूत परीक्षा का अस्वीकार करना है जो तीन परीक्षाओं में प्रथम है। बहन व्हाइट मसीह के समय की पहली परीक्षा को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश के साथ संबद्ध करती हैं। वो इंगित करती हैं कि जिन्होंने यूहन्ना का संदेश अस्वीकार किया वे न तो यीशु की शिक्षाओं से लाभान्वित होंगे और न ही उस व्यवस्थाकालीन परिवर्तन को देख सकेंगे जब मसीह आंगन से पवित्र स्थान में प्रविष्ट हुए। उसने उस क्रमिक परीक्षात्मक प्रक्रिया को मिलरवादियों के काल से जोड़ा और ये सिखाती है कि जिन्होंने पहले स्वर्गदूत के संदेश को अस्वीकार किया वे यूहन्ना के संदेश को अस्वीकार करने वाले यहूदियों के समतुल्य थे। प्रत्येक ऐतिहासिक रेखा में जो पहले परीक्षण में विफल हुए उन्हें अगले चरण से कोई लाभ नहीं मिला और वे मसीह के व्यवस्थाकालिक परिवर्तन के प्रति अंधे हो गए। जिन्होंने 9:11 के संदेश को अस्वीकार किया वे ये नहीं देख सके कि मसीह जीवितों का न्याय आरंभ कर चुका था जो 2023 की आधारभूत परीक्षा में असफल होंगे। वे युद्धरत कलीसिया से विजयी कलेशिया में होने वाले संक्रमणात्मक परिवर्तन को नहीं देख पाएंगे। इन मूलभूत परीक्षाओं में से किसी को भी अस्वीकार करने वाले पूर्ण अंधकार में जा पहुंचे। जहां दर्शन नहीं वहां लोग पूर्ण अंधकार में पड़ जाते हैं और बाह्य दर्शन का प्रकाश स्थापित करने वाली रोम ही है। ये सत्य तीन पोपों और तीन राष्ट्रपतियों के साथ उनके संबंध में पहचाना जा सकता है जो दानियल 11 के पद 10, 11 और 15 की तीन लड़ाइयों में खड़े हैं। कुरूश की बाह्य 550 वर्ष की काल रेखा जो राफिया के युद्ध से लेकर पेनियम के युद्ध तक चिन्हित 17 वर्षीय काल के मध्य 210 ईसा मेनेस पूर्व में समाप्त हुई उस 550 वर्ष की काल रेखा के साथ संरेखित थी जो नीरो से आरंभ होकर 313 में मिलान के आदेश पर समाप्त हुई। इस प्रकार कॉन्स्टेंटाइन महान का 17 वर्षीय काल चिन्हित होता है। डोनाल्ड ट्रंप 210 ईसा पूर्व जो 2026 है में एंटियोकस महान के रूप में खड़ा है और वो 313 में पशु की प्रतिमा के परीक्षण काल के आरंभ पर कॉन्स्टेंटाइन महान के रूप में भी खड़ा है। 4 जुलाई 2026 को
एंटियोकस और कॉन्स्टेंटाइन के रूप में ट्रंप अमेरिका को महान बना रहा है। ट्रंप उन तीन राष्ट्रपतियों में तीसरा है जो वचन 10, 11 और 15 की तीन लड़ाइयों के साथ संरेखित है। उन तीनों में प्रथम रीगन था और मध्यवर्ती ओबामा था। वे तीनों राष्ट्रपति सत्य की छाप धारण करते हैं और रीगन तथा ट्रंप केवल प्रथम और तृतीय का ही नहीं अपितु अल्फा और ओमेगा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्रत्येक राष्ट्रपति का एक भविष्यद्वाणात्मक लक्षण ये है कि अपने कार्यकाल में उनका उस काल के पोप के साथ एक गठबंधन होता है। रीगन और जॉन पॉल द्वितीय गुप्त रूप से संरेखित थे और उन्होंने सन 1989 में सोवियत संघ को ढहा दिया, जो दानियल 11 के 10वें और 40वें पद की पूर्ति थी। रीगन और ट्रंप के बीच के काल का वोक वैश्वीकरणवादी राष्ट्रपति ओबामा विचारधारात्मक रूप से वोक पोप फ्रांसिस के साथ संरेखित था। ट्रंप का पोप लियो के साथ गठबंधन सबके लिए प्रत्यक्ष है और 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और लियो का प्रतिख्रिस्त के रूप में अभिषेक किया गया। किसी राष्ट्रपति और पोप का आध्यात्मिक संबंध इजीबेल और सबाल के भविष्यद्वक्ताओं द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी राष्ट्रपति और पोप का राजनीतिक संबंध इजीबेल और अहाब द्वारा निरूपित किया जाता है। दोनों प्रतिरूपों में इजीबेल ही प्रधान है।
जब हम अंतिम संकट के निकट पहुंचते हैं, तब ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रभु के साधनों के मध्य सामंजस्य और एकता विद्यमान हो। संसार आंधी, युद्ध और मतभेद से परिपूर्ण है, तथापि एक ही प्रधान पापीय सत्ता के अधीन लोग उसके साक्षियों के स्वरूप में परमेश्वर का विरोध करने के लिए एक हो जाएंगे। इस एकता को वो महान धर्मत्यागी सुदृढ़ करता है जब वो सत्य के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपने अभिकर्ताओं को एक करने का प्रयत्न करता है। तब वो उसके पक्षधर लोगों को विभाजित और तितर बितर करने का भी कार्य करेगा। डाह, कुत्सित संदेह, निंदात्मक वचन, ये सब उसी के द्वारा फूट और कलह उत्पन्न करने के लिए उकसाए जाते हैं। टेस्टिमोनियस खंड 7:18। इस समय जब अधर्म प्रबल है, वे प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं जिन्होंने प्रभु यों कहता है को अस्वीकार कर दिया है, एक विचित्र स्थिति पर आ पहुंचेंगी। वे दुनियावी बन जाएंगी। परमेश्वर से अपने अलगाव में वे असत्य और परमेश्वर से धर्मत्याग को राष्ट्र का कानून बनाने का प्रयास करेंगी। वे देश के शासकों पर प्रभाव डालेंगी कि ऐसे कानून बनाए जाएं जो पाप के मनुष्य का खोया हुआ प्रभुत्व पुनःस्थापित करे, जो परमेश्वर के मंदिर में बैठता है और अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। रोमन कैथोलिक सिद्धांतों को राज्य के संरक्षण में ले लिया जाएगा, जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन का नियम नहीं बनाया है। वे अब बाइबल के सत्य के प्रतिवाद को सहन नहीं करेंगे। रिव्यू एंड हेरल्ड, 21 दिसंबर 1897।
बाल के झूठे भविष्यद्वक्ता इजबेल की मेज पर भोजन करते थे। इजबेल रानी थी और वे भविष्यद्वक्ता उसी के भविष्यद्वक्ता थे। दानियल अध्याय 11 के पद 40 में रीगन का प्रतिनिधित्व रथों और घुड़सवारों द्वारा किया गया है, जो सैन्य सामर्थ्य के प्रतीक हैं, और साथ ही जहाजों द्वारा, जो आर्थिक शक्ति के प्रतीक हैं। तथापि उसी पद में उत्तर का राजा पापाई सत्ता ही है। भविष्य सूचक अर्थ में रीगन इजबेल के अधीन था। उसी अवधि में जब पोप जॉन पॉल द्वितीय ने अन्य किसी भी पोप की अपेक्षा अधिक विश्व यात्राएं कीं, संसार पशु के पीछे आश्चर्य करता हुआ चला, प्रसिद्ध जेसुइट लेखक मलाची मार्टिन ने अपनी पुस्तक कीज ऑफ दिस ब्लड में पोप जॉन पॉल द्वितीय के विषय में लिखा। उस पुस्तक का प्रतिपाद्य ये था कि जॉन पॉल द्वितीय और रीगन के काल में विश्व शासन के लिए पापाई सत्ता संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। मार्टिन ने पूर्वानुमान लगाया कि उस संघर्ष में पापाई सत्ता विजयी होगी। रीगन और विरोधी मसीह के बीच हुए गुप्त गठबंधन ने ये उद्घोषित किया कि पापाई सत्ता के प्राणघातक घाव को चंगा करने के आंदोलन आरंभ हो चुके थे, जैसा कि दानियल अध्याय 11 के पद 40 और आगे में निरूपित है। मार्टिन की पुत्रस्तक ने प्रोटेस्टेंट अमेरिका पर अधिकार करने के पापाई सत्ता के दीर्घकालीन लक्ष्य का पुनः प्रतिपादन किया। अपने ही साक्ष्य के अनुसार बाइबल भविष्यवाणी में पोप को विरोधी मसीह मानने के तथ्य पर आंखें मूंद लेने के लिए रीगन की तत्परता इस भ्रांत अनुप्रयोग पर आधारित थी कि बाइबल भविष्यवाणी का विरोधी मसीह सोवियत संघ है।
जो लोग शब्द की समझ में भ्रमित हो जाते हैं, जो मसीह विरोधी का अर्थ समझ नहीं पाते, वे निश्चित रूप से स्वयं को मसीह विरोधी के पक्ष में खड़ा कर देंगे। क्रेस कलेक्शन 105।
रीगन उन 8 राष्ट्रतियों में प्रथम था जिन्हें दानियल के 11वें अध्याय की प्रारंभिक पदों में पहचाना गया है, और उन्हीं 8 में से वो उन 3 का भी प्रथम है जिनका मसीह विरोधी के साथ एक भविष्योक्तिपरक संबंध है। रीगन, ओबामा और ट्रंप की 3 संधियों के प्रतीकवाद में सत्य की हस्ताक्षर स्वरूप छाप पहचानी जा सकती है। पहला होकर रीगन अंतिम का प्रतिरूप है, और रीगन तथा ट्रंप के बीच की विभिन्न समानताएं आश्चर्यजनक और प्रचुर हैं। उन 3 चरणों का मध्य मार्ग चिन्ह, जो इब्रानी शब्द सत्य को स्थापित करते हैं, विद्रोह है जिसका ओबामा का राष्ट्रपति काल एक आदर्श उदाहरण है। 8 मई 2025 को पहली बार एक ऐसा पोप आसीन किया गया जो संयुक्त राज्य अमेरिका से था, और रीगन की गोपनीय संधि ट्रंप की खुली संधि तक पहुंच चुकी थी। 2025 में पाप सत्ता ने खुले रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के महिमामय देश से एक पोप का अभिषेक किया, और वही देश 1758 से उसके जोकरों का लक्ष्य रहा है। मलाकी मार्टिन की भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए जो शेष था वह रविवार का कानून था, जिसमें अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता का त्रिगुणी संघ लागू किया जाता है।
परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए पोप सत्ता की स्थापना को लागू करने वाली आज्ञा के द्वारा हमारा राष्ट्र अपने को पूर्णतः धर्मपरायणता से विच्छिन्न कर लेगा। जब प्रोटेस्टेंटवाद उस खाई के पार अपना हाथ बढ़ाकर रोमी शक्ति का हाथ थाम लेगा, जब वो उस अतय घव्वर के ऊपर से हाथ बढ़ाकर आत्मवाद के साथ हाथ मिला लेगा, जब इस त्रिविध संघ के प्रभाव के अधीन हमारा देश एक प्रोटेस्टेंट और गणतांत्रिक शासन के रूप में अपने संविधान के प्रत्येक सिद्धांत का परित्याग कर देगा और पोपीय मिथ्याओं और प्रलापों के प्रसार के लिए प्रबंध करेगा, तब हम जान सकते हैं कि शैतान के अद्भुत कार्य करने का समय आ पहुंचा है और अंत निकट है। टेस्टिमनीज खंड 5 456।
4 जुलाई 2026 को ट्रंप अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के मध्य बिंदु पर खड़े होते हुए उन तक का रसवसों का उत्सव मनाने का इरादा रखता है। वो मध्य बिंदु 2 से 6 ईपू है, राफिया के युद्ध और पैनियम के युद्ध के बीच। उन 17 वर्षों का मध्य बिंदु नीरो के 17 वर्षों के आरंभ की भी पहचान कराता है, जो सन 313 का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये कलिसिया और राज्य की संयुक्त पशु की प्रतिमा की उस क्रमिक स्थापना की ओर भी संकेत करता है जो 321 के रविवार के कानून और पद 16 की ओर ले जाती है। वो काल 313 में पूर्व और पश्चिम के विवाह से आरंभ होता है, जिसका प्रतिनिधित्व पश्चिम की ओर से कॉन्स्टाइनटाइन की सौतेली पुत्री और पूर्व की ओर से लिसिनियस करते हैं। पूर्व और पश्चिम के बीच वैवाहिक संधि से जो काल आरंभ होता है वो पूर्व और पश्चिम के पृथककरण या विवाह विच्छेद पर समाप्त होता है। मध्य मार्ग चिन्ह पहला रविवार का कानून है। रीगन, ओबामा और ट्रंप भविष्यवाणी की दृष्टि से शाश्वत सुसमाचार के 3 चरणों द्वारा संचालित है, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में 3 स्वर्गदूतों के रूप में निरूपित है। ओबामा के राष्ट्रपति काल में जो दूसरा चरण है, 2 पोप थे, वोक पोप फ्रांसिस जोसेफ रैटसिंगर, जो बाद में पोप बेनेडिक्ट 16वें बने के पश्चात आए, जिन्होंने 25 नवंबर 1981 से 19 अप्रैल 2005 को पोप के रूप में निर्वाचित होने तक विश्वास के सिद्धांत के लिए मंडली CDF के प्रमुख के रूप में सेवा की। रैटसिंगर सेवानिवृत्त हुए और फ्रांसिस ने अपने पोपत्व का आरंभ किया। फलतः ओबामा के शासनकाल में 2 पोपों की स्थिति उत्पन्न हुई। ओबामा पर एक साथ विषमलैंगिक और समलैंगिक दोनों के रूप में दोहरी भूमिका निभाने का आरोप है, और वो धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट अमेरिका के झूठे भविष्यवक्ता का प्रतीक है, जबकि वो मुस्लिम भी है जो झूठे भविष्यवक्ता मोहम्मद का भी धर्म है। ओबामा महिमामय भूमि की राजनीतिक व्यवस्था अर्थात प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 के झूठे भविष्यवक्ता का प्रतिनिधि था, परंतु उसकी वास्तविक राजनीतिक सहानुभूतियां वैश्विकतावादियों अर्थात अजगर के साथ संरेखित थीं। भविष्य सूचक दृष्टि से ओबामा स्किजोफ्रेनिक है, जो दो मिथ्या धर्मों, दो यौन प्रवृत्तियों और दो राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके शासनकाल में दो विरोधी मसीह थे। यौन प्रवृत्ति, राजनीतिक संरेखण या धार्मिक दृढ़ता किसी भी विषय में, ओबामा प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को गोपन में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध था। अमेरिकी नागरिकों को अपने ही विरुद्ध बांट देने के उसके प्रयासों के कारण कुछ लोग उसे ओबामा द डिवाइडर कहते हैं। यही बात उसकी आवरण में रखी निजी, राजनीतिक और धार्मिक मान्यताओं में भी परिलक्षित होती है। ओबामा के शासनकाल के प्रथम विरोधी मसीह ने पोप बनने से पहले विश्वास के सिद्धांत के लिए मंडली का 24 वर्षों तक संचालन किया था। विश्वास के सिद्धांत के लिए मंडली वो आधुनिक नाम है जिसे मूलतः इनक्विजिशन का कार्यालय कहा जाता था। ओबामा काल का विद्रोह हिब्रू शब्द सत्य में संख्या 13 से मेल खाता है, जो हिब्रू वर्णमाला के प्रथम अक्षर रीगन, 13वें अक्षर ओबामा और 22वें अक्षर ट्रंप से निर्मित है। इनक्विजिशन निश्चय ही विद्रोह का एक प्रतीक है। 2013 में पोप बेनेडिक्ट ने अपने सिंहासन का परित्याग करके उसे फ्रांसिस को सौंप दिया। इस्लाम के झूठे नबियों और धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के प्रतीक के स्किजोफ्रेनिक शासनकाल के दौरान अनंतकालीन सुसमाचार का दूसरा चरण एक दृष्टिगत परीक्षा है, और ओबामा तथा दो पोपों के संबंध में जो देखा जा सकता है वो है इनक्विजिशन के कार्यालय द्वारा प्रतिनिधित्वित उत्पीड़न और वॉक पोप द्वारा अभिव्यक्त माता पृथ्वी की उपासना पर वैश्वीकरणवादी की आसक्ति, इन दोनों के बीच का संबंध। ओबामा की मुस्लिम आस्था इस्लाम द्वारा उत्पन्न राष्ट्रों के क्रोधित हो उठने का और प्रोटेस्टेंट नाम द्वारा निहित उत्तरदायित्व को पूरा करने में धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद की विफलता का प्रतिनिधित्व करती है। एक प्रोटेस्टेंट का कर्तव्य रोम के विरुद्ध प्रतिवाद करना है, परंतु कभी रोम के आगे झुकना नहीं। तीन पोपों में से प्रथम समस्त विश्व के सम्मुख ये घोषित करता है कि वो मानता है कि वो फातिमा की कैथोलिक मार्गदर्शक भविष्यवाणी का अच्छा पोप है। जॉन पॉल द्वितीय स्वयं को फातिमा का अच्छा पोप मानते थे। उनके विश्वास के अनुसार वही अच्छा पोप पापाई सत्ता, संयुक्त राज्य और वैश्विकतावादियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष के समाप्त हो जाने पर लौह राजदंड के साथ अंततः समस्त विश्व पर शासन करेगा। आगामी राष्ट्रपति काल अजगर के वैश्विकतावादियों की भूमिका, इस्लाम द्वारा जातियों के क्रोधित समय और धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के प्रोटेस्टेंट बने रहने में विफल होने की घोषणा करता है। 2025 में शपथ ग्रहण किया गया ट्रंप का राष्ट्रपति काल 2025 के मसीह विरोधी के साथ खुले रूप से संरेखित होता है। रोम और संयुक्त राज्य अमेरिका की इन तीन संधियों का प्रकाश राफिया के युद्ध के निष्कर्ष और पानियम के युद्ध के आरंभ के इतिहास में उद्घाटित होता है। 17 वर्षों के आरंभ में लिसिनियस और कॉन्स्टेंटाइन के राज्यों का विवाह 2025 के संधि का प्रतिनिधित्व करता है। 2025 की संधि 10 कुंवारियों के दृष्टांत का कूटरूप है। पहले विवाह संपन्न होता है और फिर एक अन्वेषण का काल आता है, जो अंततः विवाह के दूसरे चरण तक ले जाता है, जहां उसकी परिणति होती है और द्वार बंद कर दिया जाता है। 10 कुंवारियों का ये कूटरूप तुनहार तुनशात में आरंभ हुआ और इसकी परिणति दानियल 11 के पद 16 और 41 में वर्णित शीघ्र आगमनशील रविवार के कानून पर होगी। कूट विवाह में पिता शैतान है, दूल्हा पापसी है और दुल्हन धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट अमेरिका है। दानियल 11 के पद 14 में दानियल की प्रजा के लुटेरे रोम बताए गए हैं और वही दर्शन को स्थापित करता है। दर्शन को स्थापित करने वाले प्रतीक के रूप में रोम की विलियम मिलर द्वारा की गई पहचान को अस्वीकार करना प्रथम स्वर्गदूत के संदेश और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश को अस्वीकार करने के तुल्य है। जब वर्तमान मसीह विरोधी ने 2025 में पद संभाला, तब उसने 8 राष्ट्रपतियों के दर्शन को स्थापित किया और पद 14 को पूरा किया। हम अब मंदिर परीक्षा को में है। ये दूसरी परीक्षा है जो लिटमस तोय तीसरी परीक्षा से पूर्व आती है। हम इन बातों को अगले लेख में जारी रखेंगे।